एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavientist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavientist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
Hey, come on, come on. Put those hands together. Let's praise and worship him. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Here we go. 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 Give thanks to the Lord for he is good. All my confusions he understood. Now I don't care what others might say. Wanna give him praise all night and day. Praise him when your life's all down. Hey, praise him when your life's all frowns. Just clap and dance and call his name. And you will see the devil in shame.
Koi kahe mujhe pagal diwana. Koi kahe mujhe aashik parwana. Koi kahe iski hai na thikana. Kehlo jo tum dil chahe. यीशु का प्यार है सागर से गहरा बरसाता मुझ पर शाम और सवेरा वो है मेरा मैं हूँ उसी का कह लो जो तुम दिल चाहे 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 सितारे कितने हैं प्यारे रचा है तूने इन्हें नीले नीले गगन पंछी प्यारे ये भी है तेरे ही सारे पर्वत समंदर तूने सजाया हर रंग से मेरे ही खातिर पर्वत समंदर तूने सजाया हर रंग से मेरे ही खातिर कोई कहे मुझे पागल दीवाना कोई कहे मुझे आशिक परवाना कोई कहे इसकी है ना ठिकाना कह लो जो तुम दिल चाहे 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 मैं हूँ ऊंचा, सबसे मैं प्यारा हूँ तेरा। स्वर्ग से धरती, धरती से सूली चढ़ा तू मेरे ही कारण हो। गाऊंगा मैं, नाचूंगा भी तेरे लिए ही प्रभु जी। हो गाऊंगा मैं, नाचूंगा भी तेरे लिए ही प्रभु जी। कहे मुझे पागल दीवाना, कोई कहे मुझे आशिक परवाना, कोई कहे इसकी है ना ठिकाना, कह लो जो तुम दिल चाहे। यीशु का प्यार है सागर से गहरा, बरसाता मुझ पर शाम और सवेरा, वो है मेरा मैं हूँ उसी का, कह लो जो तुम दिल चाहे।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं। जैसे हम तेरे वचनों को सुनते हैं पिता, हमारे मन और हृदयों को खोल दे और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उस वचन को समझने के लिए मदद कर और तेरे रास्ता में चलने के लिए मदद कर पिता। मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरा वचन को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं, और हर एक सुनने वालों के संग हो पिता, वे तेरे वचन को सुन करके तेरे रास्ता में चलने सके। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, दया करके सुन ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज हम लोग सीखेंगे संपूर्ण बाइबल में सब्बत। सृष्टि के छह दिन पश्चात परोपकारी सृष्टिकर्ता ने सातवें दिन विश्राम किया एवं सभी मनुष्यों के लिए सृष्टि के स्मारक के रूप में सब्बत को स्थापित किया। परमेश्वर की अपरिवर्तनीय व्यवस्था की चौथी आज्ञा इस सातवें दिन के सब्बत को सब्बत के प्रभु यीशु की शिक्षा और अभ्यास के अनुरूप विश्राम, आराधना और सेवकाई के दिन के रूप में पालन करना आवश्यक है। सब्बत का दिन परमेश्वर एवं एक दूसरे के साथ आनंदप्रद संगत करने का दिन है। यह मसीह में हमारे छुटकारे का प्रतीक है, हमारे शुद्धिकरण का चिन्ह है, हमारी निष्ठा का एक प्रतीक है एवं परमेश्वर के राज्य में हमारे अनंत भविष्य का पूर्व स्वाद है। सबत उसके व उसके लोगों के बीच अनंत वाचा का चिरस्थायी चिन्ह है। संध्या से संध्या, सूर्यास्त से सूर्यास्त तक इस पवित्र समय का आनंदपूर्ण पालन परमेश्वर के सृजनात्मक एवं छुटकारे के कार्यों का एक उत्सव है। परमेश्वर के साथ आदम व हवा ने अपने अदन के घर को देखा, दृश्य वर्णन से परे लुभावना था। सृष्टि के छठे दिन जैसे ही सूर्य उस शुक्रवार को धीरे धीरे ढल रहा था और सितारे भी दिखाई देने लगे थे, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था उसे देखा और वास्तव में वह बहुत ही अच्छा था। उत्पत्ति 1:31 कहता है, इस प्रकार परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त किया। यह रिकॉर्ड है उत्पत्ति 2:1 में। लेकिन यह दुनिया जितनी खूबसूरत थी जिसे उसने अभी अभी पूरा किया था, सबसे बड़ा महानतम उपहार जो परमेश्वर नव सृजित जोड़े को दे सकता था, वह था उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध का विशेष अधिकार। इसलिए उसने उन्हें विश्राम दिन दिया जो उनके सृष्टिकर्ता के साथ विशेष आशीष, संगति और सहभागिता का दिन था। हम पाते हैं संपूर्ण बाइबल में इस सब्बत के विषय में। सब्बत हमारी परमेश्वर की उपासना के केंद्र में है। सृष्टि का स्मारक या परमेश्वर की उपासना करने का कारण बताता है, वह सृष्टि करता है और हम उसकी सृष्टि हैं। इसलिए सब्बत दिव्य आराधना का मूल आधार है, क्योंकि यह इस महान सत्य को अति प्रभावशाली तरीके से सिखाता है, जिसे और कोई अन्य संस्थान नहीं करती। दिव्य आराधना का वास्तविक आधार केवल सातवें दिन में ही नहीं, परंतु समस्त उपासना में सृष्टिकर्ता व उसकी सृष्टि के मध्य अंतर में पाया जाता है। यह महान तथ्य कभी भी पुराना नहीं हो सकता और इसे कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। इस सत्य को मानव जाति के सामने हमेशा रखने के लिए ही परमेश्वर ने सब्बत की स्थापना की थी। हम पाते हैं सृष्टि पर सब्बत थी। सब्बत हमारे पास एक पापहीन दुनिया से आता है। यह परमेश्वर का विशेष उपहार है जो मानव जाति को पृथ्वी पर स्वर्ग की वास्तविकता का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। तीन विशेष दिव्य कार्यों ने सब्बत की स्थापना की। पहला है, परमेश्वर ने सब्बत को विश्राम किया। सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया एवं अपना जी ठंडा किया। यह हम पढ़ते हैं निर्गमन 31 का 17 में। यद्यपि उसने विश्राम इसलिए नहीं किया कि उसे इसकी आवश्यकता थी, यशायाह 40 का 28 के अनुसार। क्रिया विश्राम सब्बत का वास्तविक अर्थ परिश्रम या गतिविधि का समाप्त होना है। इसे हम तुलना कर सकते हैं उत्पत्ति 8 का 22 से। परमेश्वर का विश्राम ना तो थकावट और ना ही थकान का परिणाम था, लेकिन पिछले कार्यों से विराम था। परमेश्वर ने विश्राम किया क्योंकि उसे मनुष्यों से भी विश्राम की अपेक्षा थी। उसने मानव जाति के अनुसरण के लिए एक उदाहरण स्थापित किया, निर्गमन 20 का 11। यदि परमेश्वर ने छठे दिन सृष्टि कार्य समाप्त कर दिया, उत्पत्ति 2 का 1 के अनुसार, तो पवित्र शास्त्र का क्या अर्थ है जब यह कहता है कि उसने सातवें दिन अपना काम समाप्त कर दिया, उत्पत्ति 2 का 2। परमेश्वर ने उन 6 दिनों में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि समाप्त कर दी थी, परंतु अभी सब्बत बनाना बाकी था। सब्बत के दिन विश्राम करके उसने इसे बनाया। सब्बत ही उसकी सृष्टि को अंतिम रूप देने का कार्य था, अपने काम को समाप्त करने का। दूसरा है, परमेश्वर ने सब्बत को आशीष दी। परमेश्वर ने न केवल सब्बत बनाया परंतु उसे आशीष भी दी। सातवें दिन को आशीष देने का तात्पर्य यह है कि इस कारण इसे दिव्य कृपा के लिए विशेष वस्तु घोषित किया गया और एक दिन जो उसके प्राणियों के लिए आशीष लाएगा। तीसरा है, परमेश्वर ने सब्बत को पवित्र ठहराया। किसी वस्तु को पवित्र ठहराने का मतलब उसे पावन या पवित्र बनाना या उसे पवित्र मानकर पवित्र उपयोग के लिए अलग करना, पवित्रीकरण कर देना है। लोग, स्थान जैसे कि पवित्र स्थान, मंदिर या कलीसिया एवं समय, पवित्र दिन को पवित्र ठहराया जा सकता है। यह तथ्य कि परमेश्वर ने सातवें दिन को पवित्र ठहराया, इसका मतलब है कि यह दिन पवित्र है, कि उसने इसे दिव्य मानव संबंधों को समृद्ध बनाने के ऊंचे उद्देश्य के लिए अलग किया। परमेश्वर ने सातवें दिन सब्बत को आशीष दी और पवित्र ठहराया क्योंकि इस दिन उसने अपने सारे काम से विश्राम लिया। उसने अपने लिए नहीं परंतु संपूर्ण मानव के लिए इसे आशीष दी और पवित्र ठहराया। यह उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति ही है जो सब्बत के दिन को आशीष व पवित्रता लाती है। आगे हम देखते हैं सिनाई पर सब्बत के विषय में। मिस्र से इसराइलों के प्रस्थान के पश्चात की घटनाएं दिखाती हैं कि वे बड़े पैमाने पर सब्बत का ज्ञान खो चुके थे। ऐसा प्रतीत होता था कि दासता की कठोर आवश्यकताओं ने सब्बत पालन को बहुत कठिन बना दिया था। स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद परमेश्वर ने कड़ाई से उन्हें मन्ना के आश्चर्य कर्म के माध्यम से एवं 10 आज्ञाओं की घोषणा द्वारा सातवें दिन के सब्बत का पालन करने का उनका दायित्व स्मरण कराया। पहला है सबत दिन यों मना। सिनै पर्वत से व्यवस्था की घोषणा के एक महीने पूर्व परमेश्वर ने लोगों से रोगों से रक्षा करने की प्रतिज्ञा की यदि वे निष्ठापूर्वक उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, आज्ञाओं पर कान लगाएंगे और उसकी सब विधियों को मानेंगे। निर्गमन 15:23। इसे तुलना करें उत्पत्ति 26:5 से। इस प्रतिज्ञा देने के तुरंत पश्चात परमेश्वर ने इसराइलों को सबत की पवित्रता के विषय में स्मरण कराया। मन्ना के आश्चर्य काम के माध्यम से उसने ठोस शब्दों में उन्हें सिखाया कि वह सातवें दिन के उसके विश्राम को कितना महत्वपूर्ण मानता है। सप्ताह के प्रत्येक दिन परमेश्वर ने इसराइलों को उस दिन की उनकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मना दिया। उन्हें अगले दिन के लिए कुछ नहीं बचाना था क्योंकि यदि वह ऐसा करते तो वह सड़ जाता। निर्गमन 16:4 और 16:19 को आप देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं सब्बत एवं मसीह। शास्त्र प्रकट करता है कि वास्तव में पिता के समान ही मसीह सृष्टि करता था। 1 कुरिन्थियों 8:6 और इब्रानियों 1:1-2 और हम यूहन्ना के सुसमाचार का 1:3 भी देख सकते हैं। इसलिए वही था जिसने संपूर्ण मानव जाति के लिए सातवें दिन को विश्राम दिन के रूप में अलग किया। समय पर मसीह ने सब्बत को अपने छुटकारे के कार्य के साथ साथ अपने सृष्टि के कार्यों के साथ जोड़ दिया। उस महान मैं हूँ के रूप में यूहन्ना 8:58, निर्गमन 3:14 उसने सब्बत को 10 आज्ञाओं में सृष्टिकर्ता के साथ इस साप्ताहिक उपासना नियुक्त के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में शामिल किया और उसने सबत पालन का एक और कारण जोड़ दिया, अपने लोगों का छुटकारा। व्यवस्था विवरण 5:14-15। इसलिए सबत उन लोगों को चिन्हित करता है जिन्होंने यीशु को सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। मसीह की सृष्टिकर्ता एवं उद्धारकर्ता के रूप में दोहरी भूमिका इस बात को स्पष्ट करती है कि उसने मनुष्य के पुत्र के रूप में क्यों दावा किया कि वह सबत का स्वामी भी है। मरकुस 2:28। ऐसे अधिकार के साथ यदि वह चाहता तो सबत को खत्म कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत उसने समस्त मानव जाति पर लागू करते हुए कहा कि सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। अपनी संसारिक सेवकाई के दौरान मसीह ने हमारे लिए निष्ठापूर्वक सबत पालन का उदाहरण दिया। सबत के दिन आराधना करने की उसकी रीति थी। सबत सभाओं में उसकी भागीदारी से यह पता चलता है कि वह इसका आराधना के दिन के रूप में समर्थन करता था। सबत की पवित्रता के लिए मसीह इतना चिंतित था कि जब उसने अपने स्वर्गारोहण के पश्चात होने वाले उत्पीड़न के विषय में बात की तो उसने अपने शिष्यों को इसके बारे में सलाह दी। प्रार्थना करो, उसने कहा कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े। मत्ती 24:20 में हम यह पढ़ते हैं। यह स्पष्ट रूप से निहित है जैसा कि जोनाथन एडवर्ड ने टिप्पणी की, उस समय भी मसीही लोग सबत के सख्त पालन के लिए बाध्य थे। जब मसीह ने अपने सृष्टि कार्य को समाप्त किया जो विश्व इतिहास में उसका प्रथम महान कार्य था, उसने सातवें दिन विश्राम किया। यह विश्राम पूर्णता और सिद्धि का प्रतीक था। इसी प्रकार उसने अपनी पृथ्वी की सेवा के अंत में किया जब उसने इतिहास में अपना दूसरा महान कार्य किया। सप्ताह के 6 दिन शुक्रवार की दोपहर को मसीह ने पृथ्वी पर अपने छुटकारे के लक्ष्य कार्य को समाप्त कर दिया। उसके अंतिम शब्द थे, पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30 में हम यह पाते हैं। शास्त्र जोर देकर कहता है कि जब वह मरा वह तैयारी का दिन था और सबत आरंभ होने वाला था। लूका 23:54। अपनी मृत्यु पश्चात उसने एक कब्र में विश्राम किया, इस प्रकार या इस बात का प्रतीक था कि उसने मानव जाति के छुटकारे को पूरा कर लिया था। इस प्रकार सब्बत मसीह के सृष्टि एवं छुटकारे के कार्यों को प्रमाणित करता है। इसका पालन करके उसके अनुयायी उसके साथ मानवता के लिए उसकी उपलब्धियों पर खुशी मनाते हैं। फिर हम देखते हैं सब्बत एवं प्रेरित लोगों का संबंध। चेले सब्बत के दिन का बड़ा ही सम्मान करते थे। यह मसीह की मृत्यु के समय स्पष्ट था। जब सब्बत का दिन आया तो उन्होंने दफनाने की तैयारियों को बीच में ही रोक दिया और इस कार्य को रविवार को सप्ताह के पहले दिन जारी रखने की योजना के साथ आज्ञा के अनुसार सब्बत के दिन विश्राम किया। यह हम पढ़ते हैं लुका 23:56 में और लुका 24:1 में। जैसा कि मसीह ने किया था, प्रेरितों ने सातवें दिन सब्बत के दिन आराधना की। अपनी प्रचारिक यात्राओं में पौलुस सब्बत के दिन आराधनालय गया एवं मसीह का प्रचार किया। प्रेरितों के काम 13:14, 17:1-2 और 18:14। यहाँ तक कि अन्य जातियों ने भी उसे सब्बत के दिन परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया। प्रेरितों के काम 13:42-44। ऐसे स्थानों पर जहाँ कोई आराधनालय नहीं था, उसने सब्बत की आराधना के लिए प्रथागत जगह की तलाश की। प्रेरितों के काम 16:13। जिस प्रकार सब्बत सभाओं में मसीह की भागीदारी ने सातवें दिन को आराधना के लिए विशेष दिन के रूप में स्वीकार करने का संकेत दिया, उसी प्रकार पौलुस ने भी किया। यह प्रेरित का साप्ताहिक सब्बत का निष्ठापूर्वक पालन उसके वार्षिक अनुष्ठानिक सब्बत के प्रति स्पष्ट विपरीत रवैया दिखाता है। उसने स्पष्ट किया कि मसीही इन वार्षिक विश्राम दिनों को रखने के लिए बाध्य नहीं थे, क्योंकि मसीह ने विधि व्यवस्थाओं को क्रूस पर जड़ दिया था। उसने कहा, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया हैं, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कुलुसियों 2:17। क्योंकि इस अनुच्छेद का संदर्भ अनुष्ठान के मामलों से संबंधित है। जिन सब्बतों का यहाँ उल्लेख किया गया है वे यहूदियों के वार्षिक उत्सवों के विधि सब्बत हैं, जो एक प्रतिबिंब हैं या प्ररूप जिनकी परिपूर्णता मसीह में होनी थी। उसी तरह गलातियों में पौलुस ने विधि व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं के पालन के खिलाफ विरोध प्रकट किया। उसने कहा, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। गलातियों 4:10-11। कई लोग इस धारणा के अधीन हैं कि यूहन्ना रविवार की बात कर रहा था जब उसने कहा कि वह प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, प्रकाशित वाक्य 1:10। हालांकि बाइबल में केवल एक दिन ही प्रभु के विशेष दिन के रूप में संदर्भित किया गया है और वह है सब्बत। मसीह ने कहा, सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। निर्गमन 20:10। बाद में इसे मेरा पवित्र दिन कहा। यशायाह 58:13। और मसीह ने स्वयं को सब्बत के दिन का स्वामी कहा। मरकुस 2:28। क्योंकि पवित्र शास्त्र में केवल वह दिन जिसे प्रभु अपना कहता है वह सातवां दिन का सब्बत है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत लगता है कि यह वह सब्बत था जिसका यूहन्ना उल्लेख कर रहा था। निश्चित रूप से ऐसा कोई बाइबल उदाहरण नहीं है कि वह सप्ताह के पहले दिन या रविवार के लिए उस शब्द का उपयोग कर रहा था। पवित्र शास्त्र कहीं भी हमें ऐसा आदेश नहीं देता है कि हम सब्बत को छोड़ सप्ताह के कोई अन्य दिन को माने या किसी अन्य साप्ताहिक दिन को पवित्र या आशीषित घोषित नहीं करता है। ना ही नया नियम यह संकेत देता है कि परमेश्वर ने सब्बत को सप्ताह के किसी अन्य दिन से बदल दिया हो। इसके विपरीत पवित्र शास्त्र यह प्रकट करता है कि परमेश्वर का इरादा था कि उसके लोग अनंत काल तक सबत का पालन करें। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। हम इसे पढ़ते हैं यशाया 66 का 22 से 23 में। तो यहाँ स्पष्ट है कि सब्बत समस्त बाइबल में मिलता है। सृष्टि से लेकर प्रेरितों तक हम पाते हैं, और यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यशाया नबी के द्वारा प्रतिज्ञा किया है कि सब्बत धर्मी लोग, बचाए हुए लोग स्वर्ग में भी मनाएंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रिय, आइए हम इस सब्बत दिन को स्वीकार करें और धन्यवाद दें कि ये सुंदर पवित्र दिन परमेश्वर हमें दिया है कि हम उसके उपस्थिति में रहें और उसके संगति में आए, उसके नजदीक आए। परमेश्वर इसके मानने के द्वारा हम सबों को आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस तरह सबद का उपहार के लिए, तेरा वचन के लिए, कि हम इस सबद पालन करके तेरा पवित्रता में शामिल हो सकते हैं। हमें तेरे संग धर्मी रास्ता में चलने के लिए मदद कर पिता। हम सबों को तेरे राज में बचा ले, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudaventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान,
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।